लेकिन आप सोचो कि अगर पानी से अगर बिजली बन रही है, तो ये सूर्य के द्वारा ही ये पानी ऊपर चढ़ रहा है। सोचो सूर्य तपता है, समुद्र का पानी है वो ऊपर उठता है, तो सूर्य की शक्ति से ही पानी ऊपर उठ रहा है। बादल बन रहे हैं, बादलों ने वर्षा की है ना, तो उनसे नदियां बनी, नदी है या कहीं फिर उसको बांध में पानी को रोक लेते हैं, फिर बांध से फिर पानी निकालते हैं तेजी से, और उसी से ही जो है फिर बिजली बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से ही बिजली बन रही जितनी शक्ति है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में जो लकड़ी जला रहे हैं तो उससे बिजली बनती है, तो सूर्य के प्रकाश से कैसे बन रही? देखो सूर्य के प्रकाश से ही जो पेड़ हैं वो सूखते हैं और सूखी लकड़ी मिलती है ना, और वो उसी का ही फिर जमीन के अंदर पड़े पड़े कोयला बन जाता है ना, और उसी कोयला को जला करके जो है बिजली तैयार करते हैं। तो वो क्या है? सूर्य के प्रकाश से ही जितनी भी शक्ति है वो सब सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त हो रही है। तो जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण होता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है उसी प्रकार से। अब सोचिए सूर्य का आकार पूरे ब्रह्मांड के आकार की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन तो भी पूरे ब्रह्मांड का पोषण सूर्य के प्रकाश से हो रहा है। उसी प्रकार जीवात्मा बहुत छोटा है इस तरह की तुलना में, लेकिन जीवात्मा की चेतना के द्वारा ही ये पूरे शरीर का पोषण हो रहा है। जैसे ही जीवात्मा निकल जाए तो चेतना निकल जाएगी शरीर से, और ये शरीर फिर किसी काम का नहीं रहेगा, तुरंत बदबू देने लगता है ये शरीर, कितना अशुद्ध और दुर्गंध युक्त ये शरीर है, लेकिन ये कैसे जिंदा है? केवल आत्मा के चेतना के कारण। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। यहां पर प्रभु सचित कर रहे हैं कि धर्म की बलि ना होने दो, मतलब तुम जो है धर्म को मत नष्ट करो। किस कारण से? जो भी हो, चाहे अपनी मृत्यु क्यों ना हो जाए, लेकिन अपना धर्म नष्ट ना हो। श्रेयान सुधर्मो विगुण पर धर्मा सुनिश्चिता सुधर्मे निधनम त्रिय पर धर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भले भांति संपन्न करने से श्रेयस्कर है। स्वी कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ना? तो अपना जो धर्म है उसमें जो भी कष्ट हो, यहां तक कि मृत्यु भी हो जाए, तो भी इसमें कल्याण होगा। जो भगवान कह रहे हैं तस्मात युद्ध से भारत है कि तुम युद्ध करो, हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। भारत का मतलब ही कि हमने पहले भी चर्चा की थी, भारत शब्द बना है भरत से। भरत एक ऐसे राजा हुए हैं जो बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं, और भरत शब्द कैसे बना है? भा माने प्रकाश और रत माने आसक्त। जो व्यक्ति प्रकाश में रत हो वो भरत कहलाता है ना, जो अपने कर्तव्य में रत है वो भरत कहलाता है। तो भरत महाराज ऐसे ही महान राजा थे जो अपने कर्तव्य में रत थे हमेशा, और उन्होंने बहुत युद्ध किए, बहुत युद्ध किए उन्होंने, बहुत दुष्टों का दमन किया उन्होंने, बहुत कठोर भी थे, भगवान के बहुत भक्त भी थे, तो वो भरत कहलाते हैं जो कि प्रकाश में हमेशा आसक्त हैं, अंधकार से नफरत करे। तो वही सत्यगुण, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम सत्यगुण में हो, सत्यगुण में रह करके कर्म करो, लेकिन आत्मा को नहीं मानते हैं किए अविनाशी है, इसलिए वो निराशावादी होते हैं। ऐसी मिस्टेक बहुत से लोग हैं जो कि निराशावादी होते हैं, बहुत ज्यादा निराश रहते हैं। क्यों निराश रहते हैं? जीवन से, इस जीवन के बाद तो दोबारा जीवन है ही नहीं, सब खत्म है, इसलिए वो निराशावादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, निराशा और आशा दोनों है। शरीर से निराश हो जाओ लेकिन आत्मा के प्रति आशावान रहो, लक्ष्य बनाओ कि इस आत्मा को हम नरक में नहीं जाने देंगे। अभी तक जितने भी हमने बुरे कर्म किए हैं, अब छोड़ करके उन बुरे कर्मों को और अनन्य भजन करो भगवान का। है किसी ने हमने कहा कि सब हर जगह सूर्य के द्वारा ही पालन हो रहा है पूरे ब्रह्मांड का, तो बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जहां की सूर्य की किरण नहीं पहुंच रही, सूर्य का ये जो है प्रकाश नहीं फैल रहा है, तो वहां पर क्या है? देखिए जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है वहां पर भी प्रकाश कहां से हो रहा है? आप जानते हैं प्रकाश के लिए क्या है, जिन स्थानों में सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है उन स्थानों में कौन सा प्रकाश हो रहा है, कहां से प्रकाश हो रहा है? हैं, मणि से। जैसे नीचे जमीन के नीचे अतल बेताल सतल अतल महातल सातल पाताल, ये सप्त भूमि विवर है ना, सप्त पाताल है, तो वहां पर सर्पों की मणियों के द्वारा प्रकाश हो रहा है ना, मणियां। जैसे हीरा है, हीरे हीरा भी चमकता है। आप सोचो कि ये मणियां हैं, ये बनती कैसी हैं? सूर्य के प्रकाश से ही बनती हैं। जो भी हो जैसे भी हो, जैसे कि कोई हीरा को कहा जाता है कि वो कोयले से ही हीरा बनता है, कोयला ही आगे चल करके हीरा बनता है। और कोयला कैसे बना है? सूर्य के प्रकाश से। पेड़ सूखते हैं और लकड़ी जमीन में दबी रहती है, तो लाखों साल के बाद जो है ना वो लकड़ी जो है गर्मी किससे जो जल जाती है और कोयला बन जाता है। तो सूर्य के द्वारा ही ये जो पेड़ हैं वो उगते हैं, सूर्य के प्रकाश में ही सूखते हैं और वही फिर ढक जाते हैं जमीन के अंदर, तो उसी से ही हीरा बनता है जो चमकता है। तो जितने भी रत्न हैं उनमें सूर्य का ही प्रकाश होता है जिससे रत्न बनते हैं, चमकते हैं। जो तो सूर्य के बिना तो कोई गति नहीं है। तो मायावादियों का यह विचार है कि जैसे एक ही धागे में बहुत से मणियां हों, जैसे एक ही धागे में ये बहुत से फूल गुथे हुए हैं, हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान निराकार है ना, आत्मा एक ही आत्मा है। देखिए जो एक ही आत्मा जिसकी बात बताई गई है जिसमें कि ये सब गुथा हुआ है पूरा संसार, वो परमात्मा है ना, ये सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है जो कि दिखाई नहीं पड़ रहे। प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, इस बात को कौन समझेगा? ये प्रभुपाद समझाते हैं, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं हैं, एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा। जीवात्मा एक शरीर में एक ही होता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में एक ही है। अंतर है ना,
आकार है
आकार, परमात्मा का आकार है। जैसे कि इस धागे का आकार है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है धागे का आकार, ये फूल दिखाई पड़ रहे हैं शास्त्रों के बिना। हमें शास्त्रों को पढ़ना होता है, समझना होता है। यहां तक ये भी जो देह नाशवान है ये भी बातें हमें सुन ली लेकिन फिर भी बैठ नहीं पाती है। हमें शास्त्र साधु आचार्य की सहायता चाहिए इसको भी समझने के लिए कि देह नाशवान है, तो जीवात्मा विनाशी है और देह नाशवान है, इस बात को भी समझने के लिए हमें शास्त्र साधु आचार्य चाहिए जिनके मुख से हमें सुनना पड़ता है बार बार। प्रभुपाद जी कई दिनों तक लगातार इसी बात पर प्रवचन देते रहे कि हम लोग शरीर नहीं है। किसी शिष्य ने कहा प्रभुपाद इतना तो हम समझ गए, आप और आगे की बात बताइए। प्रभुपाद कहते तुम इतना भी नहीं समझे अभी, इतना नहीं समझे अभी ना। तो इसलिए हमें जो है जरूरी है कि हम मार्गदर्शन प्राप्त करें हर चीज में। जो चीज कठिन कठिन लगती है वो सरल हो जाती है और जो चीज सरल लगती है वो कठिन हो जाती है। कोई व्यक्ति सोचता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना तो बहुत सरल है, हम मरते समय हम उच्चारण कर लेंगे, हमें जीवन भर अपना सुख भोग करें, मरते समय उच्चारण कर लेंगे। हम तो जानते हैं, हमने किसी से कहा भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, बोले हाँ मुझे पता है, पता है। तो ऐसे कहते हैं पता है कि बस ठीक है, कभी अगर कष्ट आएगा तो तुरंत बोल देंगे हरे कृष्ण महामंत्र और कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उसी समय नहीं निकलता। जैसे तोता है, तोता है ना, तोता तो खूब राम राम बोलता है, लेकिन जैसे बिल्ली आती है उसके सामने तो फिर टें 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 करने लगता है, राम नाम उसका बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम ले रहा है ना, लेकिन अगर वो जो है साधु संग नहीं करता है, भक्तों का संग नहीं करता है, तो ये जो सरल कार्य है वो कठिन हो जाता है। बहुत से लोग बताते हैं है? हमने कहा कि भाई आप जाप करते हो, हाँ पहले जाप करते थे, आप जाप नहीं करते। क्यों जाप नहीं करते? दिमाग बड़ा अपसेट है, व्यापार में घाटा हो गया इसलिए, ये पिताजी का देहांत हो गया इसलिए अब जाप नहीं होता है, दिमाग बहुत अशांत है, परेशान है। यहां तक कि हरे कृष्णा बोलने के लिए भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, साधु आचार्य की जरूरत है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र कैसे बोले, इसकी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। यहां तक कि सिर्फ श्रवण करने के लिए आप बैठते हैं, इसमें भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है कि आपको कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, इसमें भी। तो इस तरह से जो है कोई व्यक्ति बहुत सरल समझता है कि भाई ये ज्ञान तो बहुत सरल है और मैंने कई बार पढ़ लिया है ना, नहीं तो भी वो समझाता नहीं किसी को और समझा नहीं पाता। कई लोग कहते हैं हमने गीता तो कई बार पढ़ ली है, तो मैं कहता हूं कि आप जरा बताओ उसको, 5 मिनट तो जरा बताओ कि गीता में क्या है, तो नहीं बता सकते। 5 मिनट के लिए बताओ कि गीता के अंदर क्या है, तो बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रवण नहीं किया है, जैसे कि विधि पूर्वक कहा जाता है श्रवण करना, अच्छी प्रकार से श्रवण करना है, प्रश्न करना है, प्रणाम करना है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इतने सरल कार्य को भी नहीं कर पाता है। ये बताया गया कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है ना अंतकाल में, और वही परीक्षा का समय है। अंतकाल की परीक्षा ऐसी है जिसमें कि आपको प्रश्न आउट हो चुका है, ये परीक्षा ऐसी है जिसमें प्रश्न आउट है, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। प्रश्न यही है कि अंतिम समय जब आएगा तो आपको क्या करना है, और इसका उत्तर भी आउट हो चुका है कि आपको यही करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आउट है, प्रश्न भी आउट है और उत्तर भी आउट है, लेकिन समय पता नहीं है कि समय कब आएगा परीक्षा का, इसलिए दिक्कत होती है। उत्तर आउट है, प्रश्न आउट है, लेकिन समय का पता नहीं है, इसलिए दिक्कत है। जबकि सामान्य परीक्षा होती है उसमें क्या होता है, स्थान पता चलता है, स्थान और किस समय परीक्षा होगी ये पता होता है, लेकिन प्रश्न आउट नहीं होता है। तो सामान्य परीक्षा है उसमें प्रश्न का पता नहीं होता कि भी कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन स्थान और समय निश्चित होता है। लेकिन ये जो जीवन की परीक्षा है या मृत्यु की परीक्षा है उसमें क्या होता है कि क्या पूछा जाएगा ये आपको पता है, उसमें क्या करना है आपको जब मृत्यु निकट आ रही है, ये प्रश्न है, लेकिन किस समय पूछा जाए वो पता नहीं आपको, इसलिए ये परीक्षा ज्यादा कठिन है, ये परीक्षा ज्यादा कठिन है, जबकि प्रश्न भी आउट है और उत्तर भी आउट है, लेकिन समय का पता है किस समय होगा। जिस समय प्राण निकलते हैं उस समय आप बोल भी नहीं सकते, आप हाथ से लिख भी नहीं सकते कि क्या करना चाहिए, इसलिए दिक्कत है। तो हमें ये बातें भी बड़ी सावधानी पूर्वक समझना है, देह को फिर इतना महत्व नहीं देना जितना लोग देते हैं, जो लोग देह को ज्यादा महत्व देते हैं है ना, उनके दिमाग में ये बात बैठी नहीं है, अंत वंत में देहा नित्य सुखता शरीर न, तो शरीर है वो नित्य है, अनाशी है, अप्रमेय है। इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो, अविनाशी तो तुम उसको जानो जिसके द्वारा यह संपूर्ण यह व्याप्त है। अब यह का मतलब जगत है या शरीर है, यह आपको सोचना है क्या लें। एकदम का मतलब ये जगत आप मानेंगे या शरीर मानेंगे, आपको ये विचार करना है। ऐसे कई विचार हैं, एक विचार तो यह है श्लोक संख्या 16 में भगवान ने कहा है ना भावो ना सतो वेदते भावो ना भावो वेदते सता, कि जो असत है उसका भाव नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, असत का अभाव नहीं है, ये भगवान बतला रहे हैं। अब असत का मतलब क्या है, ये भौतिक शरीर, और सत का मतलब जीवात्मा है ना। इसका मतलब है कि श्लोक में भी भगवान जीवात्मा की बात कर रहे हैं, जीवात्मा और शरीर की बात कर रहे हैं। तो 17वें श्लोक में भी भगवान तत् कह करके जीवात्मा की बात कर रहे हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि, और ये येन कह करके जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर व्याप्त है, तो वो येनम, येन का मतलब जिसके द्वारा, मतलब जीवात्मा के द्वारा इस तरह से संपूर्ण शरीर व्याप्त है, इसको समझ लो। और इसी को ही फिर पुष्ट करने के लिए प्रभुपाद जी श्वेतासुर उपनिषद का एक मंत्र बताते हैं कि जीवात्मा का शरीर इतना छोटा है, तो फिर आप ये अर्थ कैसे निकाल सकते हैं कि इस जीवात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, आप समझना। इसलिए जो दूसरी टीकाएं हैं उनसे सावधान रहो, अगर आपको पढ़ना ही है दूसरी टीकाएं तो सावधानों के पढ़ो, क्योंकि वो जो है ना कई जगह गलतियां करते हैं, अगर कुछ समझेंगे तो इसी पुस्तक के द्वारा समझेंगे। आप किसी को पुस्तक पहुंचा देते हैं तो हो सकता है आज वो ना समझे, पुस्तक वो रख लेगा, ये पुस्तक रखी रखी ही उसके घर में तीर्थ का काम करती है, और उस तीर्थ के प्रभाव से, प्रसंगों के प्रभाव से जब व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाएगी तो फिर आगे वो पढ़ेगा। अमर नहीं है, एक दिन मरेंगे, चरम का मतलब है बहुत समय तक। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य और परशुराम, हो गया पूरा कैसे। जब भगवान को पुकारा वो बहुत संकट में थी, तो उसने भगवान को महायोगी कहा है ना। आपका प्रश्न है कि भगवान को महायोगी क्यों कहा, भगवान को महायोगी द्रौपदी कह रही है क्योंकि द्रौपदी जानती है कि वे द्वारका में है, अभी भगवान द्वारका में। हाँ, तो द्वारका, तो द्रौपदी का भाव यह था कि भगवान द्वारका में है, द्वारका में रह करके भी वो मेरी रक्षा कर सकते हैं, क्यों, योगी, जो योगी है वो ऐसा काम कर सकते हैं। और कृष्ण महायोगी, कोई योगी होता है ना तो यहाँ बैठे बैठे ही वो जो है दूर की चीजें ला सकता है अपने हाथ में, है? किसी के पास अगर मान लो कुछ योग शक्ति हो है ना, तो वो बैठे बैठे ही वो चंद्रमा को भी छू सकता है, बैठे बैठे ही वो जो है अपने हाथ में कोई भी चीज ले सकता है दूर से। तो ऐसे कई उदाहरण हैं योगियों के, क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ता, हाथ बढ़ा करके ही वो कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं दूर से ही, ऐसे हैं। तो भगवान तो महायोगी हैं, भगवान दूर से भी सब काम कर सकते हैं, वो महायोगी हैं। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, सिखों के गुरु थे, तो उनका उस दिन, एक दिन उनकी ब्यास पूजा थी, उनका जन्मदिन था, तो उनके शिष्य लोग हैं वो बहुत लोग उनकी पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे और जो ना सिक्के दे रहे थे उस समय उनको। तो उस समय कहाँ कहीं पंजाब में उनका एक शिष्य था जो कि व्यापारी था, व्यापारी था। तराजू में क्या था कि वैसे वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको जो पुलिस से पकड़वाने के लिए उसकी तराजू में वो कुछ कर दिया, नुक्स निकाल दिया, नुक्स बना दिया, तराजू उसकी सही नहीं थी। 50 ग्राम या 100 ग्राम जो है उसकी तराजू जो है कम तौल रही थी। वो उसका किराने की दुकान थी, है ना, और उसको पता नहीं चला। वो जो उसके दुश्मन लोग थे उन्होंने उसकी तराजू में कर दिया था, और यहाँ पुलिस को इत्तला दे दी भाई इनकी तराजू का चेकिंग कर लो, और ये जो है कम तौल रहे हैं। अब जिस समय वो पुलिस वाले आए, उन्होंने तराजू को चेक किया तो 100 ग्राम जो है इस तरफ कम पड़ रहा था, है ना। तो वो अब जो है उस समय अपने गुरु को याद करने लगे कि गुरु महाराज अब आप बचाओ, है मैं तो बहुत बड़े खतरे में फंस रहा हूँ। उनको जेल हो जाती और पूरा व्यापार ठप हो जाता, सब पुलिस छीन लेते उनका, सब माल सब छीन लेते और उनको जेल में डाल देते। तो उन्होंने अपने जो है ना गुरु जी को याद किया, तो उन्होंने गुरु जी के हाथ में जो है ना 100 ग्राम के सिक्के रखे हुए थे, तो उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया अपने 100 ग्राम को, ऐसे कर दिया इस तरह से, तो वो जो है वो 100 ग्राम का जो है इधर इधर भी वजन आ गया पूरा, और तराजू सही हो गई। तो ये सिद्धि उनके गुरु के पास, ये सिद्धि थी। वो कई मील दूर बैठे थे, मतलब हजारों मील दूर बैठे हुए थे, और उनके हाथ में 100 ग्राम के सिक्के थे, उन्होंने ऐसे करके और वो तराजू को बराबर कर दिया जहां पर 100 ग्राम कम पड़ रहा था पलले को, और पलला बिल्कुल बराबर हो गया तराजू का। पुलिस वाले कहा कि आप माफ करो, हमें कुछ शक हो गया था तो हम आए थे, और आपका काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप में कोई बेईमानी नहीं है। बाद में उनको पता चला कि उनके गुरुजी ने उनको बचाया था, अपने गुरुजी को याद किया उन्होंने, ऐसा दूर से उन्होंने रक्षा कर ली। और दूर से उनको पता भी चल गया कि उनका शिष्य जो है ना बड़े संकट में है, और क्या संकट है वो दूर से ही उन्होंने देख लिया, वो पता चल गया उनको कि क्या हो रहा है। और दूर में बैठे बैठे उन्होंने 100 ग्राम का जो है वजन उनकी तराजू में बढ़ा दिया दूर से ही। तो इस तरह से फिर भगवान तो योगियों के भी योगी हैं, महायोगी हैं, वो क्या नहीं कर सकते। इसको कहते हैं भक्त लोग जो है पर्सनलिस्ट होते हैं, पर्सनलिस्ट समझते हैं, मतलब सगुणवादी है। भगवान को ऐसे नहीं मानते कि निराकार है, सब जगह व्याप्त हैं, ऐसे नहीं मानते भगवान को, ऐसे मानते हैं है? कि यहीं पर ही है भगवान राधा पार्थी, और यहीं से ही वो पूरे संसार में नियंत्रण कर सकते हैं। उनको जरूरी नहीं है कि हर जगह वो रहे तभी उनका नियंत्रण होगा, इसी जगह से भी वो सब कुछ जान सकते हैं, और इसी जगह से ही वो सब पूरे संसार में नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े योगी हैं भगवान, बहुत बड़े योगी हैं। योगी एक जगह बैठे बैठे ही वो दूर दूर के भी काम कर लेता है, वो बैठे 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 ही वो बाहर भी देख सकता है, मंदिर के बाहर भी देख सकता है, दिल्ली शहर को भी देख सकता है, दिल्ली शहर के बाहर भी देख सकता है, और कोई चीज अगर चाहे तो पकड़ भी सकता है दूर से ही। ऐसे भक्तों में भी होती हैं इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। कोई भक्त थे तो बहुत दूर थे, कुछ लोग उनके पास आए चमत्कार देखने के लिए, उनसे पूछा कि आप चमत्कार दिखाओ, तो उनके हाथ में एक मोटी धार वाला एक चाकू था, खुन्ना चाकू था, मोटी धार वाला चाकू था। उन्होंने जमीन में खट 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 ऐसे 3 बार जमीन में मारा, तो आदमी जो लोग उस महात्मा जी से मिलने आए थे बोले, महात्मा जी आप नाराज हो रहे हैं क्या, हमने आपसे कहा आपको चमत्कार दिखाई तो आप नाराज हो रहे हैं क्या। तो महात्मा जी बोले, नहीं मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। वो वृंदावन में वो बोले कि वो जो नंदग्राम में जो मंदिर है वहां पर तुलसी का जो पेड़ लगा है वो बकरा तुलसी खा रहा है, उसको भगाने के लिए मैंने ये चाकू मारा है इधर जमीन में। कितनी दूर बैठे हैं कि उसको भगाने के लिए मैंने चाकू मारा जमीन में। और वहां जब गए तो वहां पर जब बात की, पूछा लोगों से कि भाई अभी थोड़ी देर पहले क्या कोई बकरा था जो तुलसी खा रहा था यहाँ पर, बोले हाँ वो बकरा तुलसी खा रहा था, और अचानक उसको वो ऐसे भागा जैसे किसी ने उसको मारा है, है? और वहां पर तुलसी के पास में उसे कुछ बाल है जो है ना झड़े हुए गिरे थे, उन्होंने चाकू मारा ना उसको, वो मोटे धार वाला चाकू था तो उसने उसके बालों को काट दिया, बाल उसके गिरे थे और वो जो है तुलसी खाना छोड़ करके वो भाग गया, उसको मार पड़ी। तो ऐसे ही योगी है। द्रौपदी ने जब भगवान को महायोगिन कहा तो इसीलिए कहा कि आप द्वारका में जरूर हैं, लेकिन तो भी द्वारका से भी आप यहाँ आ सकते हैं, है? बिना रथ के, बिना रेलगाड़ी, बिना बस के आप आ सकते हैं द्वारका से हस्तिनापुर। द्रौपदी हस्तिनापुर में थी और कृष्ण द्वारका में थे, तो कितने दूर है दिल्ली से द्वारका? कम से कम 2000 किलोमीटर, है ना, 2000 किलोमीटर। तो महायोगी हैं, इसलिए कृष्ण 2000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकते हैं बहुत थोड़े समय में, कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। और कृष्ण इसी प्रकार से आए, द्वारका से ही आए, क्योंकि उसने द्वारका में माना था कि कृष्ण द्वारका में है, तो कृष्ण द्वारका से आए। भक्त लोग यही मानते हैं, है? किसी भक्त की धारणा यही होती कि मेरे भगवान यहीं पर हैं, भगवान से मिलता तो यहीं पर आता है, यहीं पर भगवान से बात करता है, यही मानता है कि भगवान यहीं पर है, भगवान उसके लिए फिर यहीं पर ही दर्शन देते हैं, यहीं पर ही बात करते हैं, है? और बहुत दूर जाता है वो तो इन्हीं भगवान को याद करता है कि मेरे भगवान यहां पर हैं, मैं भगवान से बहुत दूर हूं। ये जो ज्ञान है ये परमात्मा के ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति सोचता है सब सबके हृदय में परमात्मा रहे, ये जो परमात्मा का साक्षात्कार है इससे ज्यादा जो है ना ऊंचा साक्षात्कार भगवान का है। क्योंकि यहां पर वो भगवान को देखता है और भगवान से बातें करता है, हृदय में कोई परमात्मा को देखता है लेकिन प्रत्यक्ष बातें नहीं कर सकता परमात्मा से। लेकिन हाँ कोई कोई भक्त है वो अपने हृदय में भगवान को देखते हैं और भगवान से बातें करते हैं, ये भी है। तो परमात्मा साक्षात्कार नहीं है, वो भगवत साक्षात्कार है जो हृदय में करते हैं, वो भगवान का साक्षात्कार। प्रेमांजन छुरत भक्ति विरोचन ने संता सदैव हृदय सुबिलो की अंति, संत लोग हृदय में देखते हैं। जब श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तुम अहम जाने, श्याम सुंदर गोविंद को देखते हैं, है? उसके हृदय में ही निवास करते हैं गोविंद, और वे जो है अपने हृदय में बात करते हैं भगवान से, ऐसा होता है।